أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنا پر اور جس کلمہ کے پڑھنے پر ہمارا اور آپ کا رشتہ اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، ہم اللہ کے مومن بندے کہلاتے ہیں. وہ کلمہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کہلاتا ہے. اس لا الہ الا اللہ کا ترجمہ عارفین نے کیا. ایک ترجمہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، اور عارفین نے ترجمہ کیا لا الہ یعنی لا محبوب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں. اب سوال یہ تھا کہ جب معنی یہی ہے، اس کلمے کا مقصد یہی ہے، تو پھر لا محبوب کہا جاتا، لا محبوب کہا جاتا لا الہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کی وجہ کہ محبت کا راستہ بغیر عبادت کے طے نہیں ہو سکتا. اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں یا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو بغیر عبادت کے نہ محبت آ سکتی ہے اور نہ ہی یہ بغیر عبادت کے محبت کا دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے. اس لیے وہاں تھا اصل میں لا محبوبہ، مگر بنایا گیا لا معبودہ، لا الہ یعنی لا معبودہ. اب جب یہ بات تھی کہ اصل تو محبت ہے، مگر محبت کا راستہ عبادت ہے، اور محبت کی جگہ انسان کا قلب اور انسان کا دل ہے، تو گزشتہ ہفتے بات آئی تھی کہ انسان اپنے دل پہ نظر رکھے، کہ ہم اپنے دل پہ نظر رکھیں. اس پہ گزشتہ ہفتے بات آئی تھی. آج ہم ذرا گفتگو کریں گے کہ ہم اپنی عبادت پہ نظر رکھیں، کہ ہماری عبادت کس طرح کی ہو رہی ہے اور عبادت کس طرح کی ہونی چاہیے. عارفین نے لکھا، مولانا کہتے عارفین نے لکھا کہ عبادت کے تین درجے ہیں. ایک انسان عبادت کرتا ہے صرف اس لیے کہ ہمیں اس پر اجر و ثواب ملے گا، خدا کے عذاب سے بچ جائیں گے. ذرا غور کرنا اس پہلو ہو، ایک انسان، ایک مرد ہو یا عورت ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، اگر عبادت کس نیت سے کرتا ہے کہ ہمیں اس پر ثواب ملے گا، ہمیں اس پر جنت ملے گی، ہم عذاب سے بچ جائیں گے، جہنم سے ہم بچ جائیں گے، فرماتے ہیں یہ عبادت کا سب سے ادنا درجہ ہے، عبادت کا سب سے ادنا درجہ. اور یہ ایسے ہی ہوا جیسے کسی بادشاہ نے اپنے خزانے کھول رکھے ہوں، لیکن کوئی بندہ گیا تو اس کو صرف چاکلیٹ اور بسکٹ اس نے پکڑا دی، تو کہا جائے گا کہ بادشاہ کی طرف سے اسے سب سے ادنا درجے کا انعام ملا. تو عبادت کرنا، نماز کا پڑھنا، ذکر و تلاوت کا کرنا، اس نیت سے کہ ثواب ملے اور ہم عذاب سے بچ جائیں, اس نیت سے کرنا کہ عبادت کا سب سے ادنا درجہ. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہم جو اب تک عبادت کرتے ہیں, عبادت کے شروع میں ہماری نیت کیا ہوتی ہے, ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے, اور اس کا دوسرا درجہ عبادت کا یہ کہ ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں نہ تو ثواب کا خیال, نہ ہی گناہ اور عذاب سے بچنے کا خیال, بلکہ یہ ارادہ کہ ہم اپنے خالق اور مالک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں, اس کے سامنے ہم ماتھا اور پیشانی کو ٹیکتے ہیں, مقصد یہ ہے کہ سب کا ہمارا ایک رشتہ قائم ہو جائے, ایک نسبت قائم ہو جائے, تعلق قائم ہو جائے. فرماتے ہیں یہ پہلے درجے کے مقابلے میں یہ درجہ تھوڑا بلند ہے. اور عبادت کا ایک تیسرا درجہ جو اصل مقصود ہے اور وہی ہمیں حاصل کرنا ہے, عبادت کا تیسرا درجہ مقصورات ذرا غور سے سنے, کہ نماز پڑھنے کا مقصد, تلاوت کا مقصد, ذکر کا مقصد, نیکیوں کا مقصد, تمام عبادتوں کا مقصد صرف یہ ہو کہ نہ تو مجھے ثواب پہ نظر, نہ جہنم سے بچنے کا خیال, نہیں بلکہ صرف مقصد یہ ہو کہ میرا محبوب مجھے نگاہ محبت سے دیکھ لے. اب دیکھیے آپ, بادشاہ اگر نگاہ محبت سے دیکھ لے تو پورا کا پورا خزانہ اس کے حوالے ہو جاتا ہے کہ خزانے میں سے تم جو لینا چاہو لے سکتے ہو, اس لیے کہ تم میری نگاہ میں محبوب بن چکے. تو عبادت کا تیسرا درجہ اور عبادت کرنے سے پہلے پہلے یہ ارادہ کرنا اور عبادت سے پہلے پہلے یہ جذبہ دل میں پیدا کرنا کہ میرا اللہ آج کی نماز کے پڑھنے پر اور میرا اللہ آج کے ذکر کے کرنے پر نگاہ محبت سے دیکھ لے گا اور اعلان کر دے گا کہ آج سے یہ میرا بندہ محبوب بن گیا. فرماتے ہیں کہ یہ عبادت کا درجہ سب سے اعلیٰ درجہ اور یہی عبادت مقصود اور محبوب ہے. ہم ذرا عبادت کے ان تین طریقوں پہ غور کریں کہ ہم کیا دوسرے اسٹیج اور کیا دوسرے درجے تک بھی پہنچ پائے یا نہیں, یا صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ نماز فرض ہے, ایک فریضہ ہمارے ذمے سے ثابت ہو جائے اور نماز نہیں پڑھیں گے تو قبر میں اور محشر میں اور دنیا میں رسوائی اور ذلت ہوگی. یقیناً اس سے فریضہ ثابت ہوگا, ایک درجے میں ہمیں ثواب بھی ملے گا, لیکن یہ آدھا درجہ نہیں. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ عبادت تین مقصد کے لیے کرتے ہیں یا عبادت کرنے والے کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ انسان جو خوف کی بنا پر عبادت کرتا ہو, وہ انسان جو خوف کی بنا پر عبادت کرتا ہو, جہنم کے خوف سے, قبر کے خوف سے, اللہ کے خوف سے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک انسان جنت کے خاطر عبادت کرتا ہو کہ مجھے جنت ملے گی, جنت کے درجات ملیں گے. تو حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبادت کرنے والے تین طرح کے, ایک وہ جو خوف کی بنا پر عبادت کرتے ہیں, ایک وہ جو جنت کے لیے عبادت کرتے ہیں, اور ایک وہ جو محبت الہی کے لیے عبادت کرتے ہیں. فرمایا تینوں میں سب سے اعلیٰ درجہ, سب سے بہتر درجہ انسان کے لیے محبت الہی کے لیے عبادت کرنا. پھر فرمایا جس انسان, جو انسان خوف الہی کی بنا پر عبادت کرے گا اس کے اندر تین باتیں آ جائیں گی. پہلی بات, وہ انسان اپنے اندر اپنے آپ کو ذلیل, اپنے آپ کو حقیر, اپنے آپ کو دوسرے سے کمتر, اپنے آپ کو دوسرے سے گھٹیا سمجھے گا. وہ نماز, وہ عبادت جو خوف الہی کی بنا پر ہوئی, اس عبادت کا خاصہ, اس عبادت کا فائدہ کہ خود وہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کمتر ہوں, پتہ نہیں میری نماز دوسرے مصلیوں کے مقابلے میں اچھی بنی یا ان کی بنی کہ نہیں بنی, یہ خیال انسان کے دل میں آنے لگے. تو انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقیر سمجھے. دوسرے نمبر پہ جتنی نیکیاں کرتا جائے, نیکیوں کے میدان میں جتنا بڑھتا جائے, بڑھتے بڑھتے اپنی نیکیوں کو سب سے کم تر سمجھے. अपने आप को सबसे कम तर समझे और तीसरे नंबर पे दूसरे तमाम इंसानों के मुकाबले में अपने आप को सबसे ज्यादा गुनाहगार समझे। हजरत बकर सिद्दीक फरमाते हैं ये इबादत का गोया पहला और अदना दर्जा है। अगर अब हम गौर करें कि क्या इबादत का ये अदना दर्जा जिसकी तीन अलामतें हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने बताई है, क्या ये तीन अलामतें हमारे अंदर अब तक पैदा हुई या नहीं हुई कि क्या इबादतों के करने के बाद हम अपने आप को हकीर समझते हैं या दूसरों से अपने आप को बेहतर समझते हैं, क्या इबादतों के करने के साथ साथ अपनी नेकियों को कम समझते हैं या अपनी नेकियों को बराबर और जायज समझते हैं, क्या इबादतों के करने के साथ साथ अपने आप को गुनाहगार समझते हैं या नहीं। अगर नहीं समझते तो इसका मतलब ये निकला कि हमारे नामयामाल में इबादत का अदना दर्जा तो लिखा जा रहा है मगर उसका फायदा अभी तक हमको हासिल नहीं। दूसरे नंबर पे फरमाया वो लोग जो जन्नत के ख्वाहिश में और जन्नत की तरफ से इबादत करते हैं उसके बारे में फरमाया तो उसके लिए अंदर तीन अलामतें। पहली अलामत ये है कि अल्लाह उसे मकबूल को बना देगा, बंदों की निगाह में मकबूल बन जाएगा। दूसरे नंबर पे उसके अंदर सहावत, उसके अंदर सहावत की सिफत पैदा होगी, वो अपने माल के एतबार से, देने के एतबार से और दिल के एतबार से बड़ा कुशादा इंसान बन जाएगा, कुशादगी पैदा हो जाएगी, किसी को देता भी रहेगा, किसी की हिम्मत भी करता रहेगा, किसी की निराजारी नहीं करेगा, ये कुशादगी दिल की सिफत उसके अंदर पैदा हो जाएगी। तो पहली बात उसके अंदर लोगों के अंदर उसकी मकबूलियत और दूसरे नंबर पे वो इंसान के अंदर कुशादगी पैदा हो जाएगी और तीसरे नंबर पे हर इंसान की शफ़क़त, हर मखलूक के साथ शफ़क़त, हर मखलूक के साथ नरमी की सिफत उसके अंदर आएगी। अब जरा हम गौर करें क्या इबादत का ये दर्जा और ये असरात और ये फायदे हमारे अंदर पैदा हुए या हमारे अंदर पैदा नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो हमें हसरत करना है जब तक कि जिंदगी में गोया एक नमाज और इबादत हमारी सज्दे की ना हो सकी कि ये सिफात हमारे अंदर पैदा हो जाए। फिर फरमाया जो बंदा इबादत मोहब्बत के इलाही के लिए कि अल्लाह की मोहब्बत की बिना पर मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फरमाया इस बंदे के अंदर ये सिफत पैदा हो जाए उसको सबसे पहला उसके अंदर फायदा ये होगा कि वो बंदा ख्वाहिशात से नफ्स से बचने लगेगा, ख्वाहिशात से नफ्स से बचने लगेगा, यानी हमेशा वो उन चीजों से बचेगा जो नफ्स का तकाजा करता है, गुनाह के तमाम चीजों से बचने लगेगा, ऐसे मुबाह और ऐसे जायज चीजों से भी बचेगा जो जायज और मुबाह चीजें उसके रास्ते में रुकावट बनती है और उसके बाद वो हमेशा नेकी के काम के लिए चुस्त रहेगा और नेकी के काम में हमेशा चुस्त रहेगा और बुराई के काम से वो हमेशा अपने आप को बचाता रहेगा और उसकी इबादत की तरह उसकी इबादत में हमेशा मोहब्बत का रंग शामिल रहेगा। ये हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की कलाम का खुलासा ये निकला। और आज हमें अपनी इबादत से गौर करना है कि हमारी इबादत इन तीन दर्जों में से कौन से दर्जे में है। अगर हम ये तय करते हैं कि पहले दर्जे में, तो फिर हमें अपने दिल से पूछना पड़ेगा कि क्या उस पहले दर्जे के तीन फायदे और उसके तीन असरात भी हमारे अंदर जाहिर हुए या नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो इसका मतलब यह है कि अभी हमें अपनी इबादत को बनाने और अपनी इबादत को संवारने की जरूरत है। राबिया बकरिया एक खातून है, एक औरत थी, एक हाथ में पानी का प्याला और दूसरे हाथ में अंगारा, बर्तन के अंदर आग का अंगारा। देखिए मारे जज्ब के अंदर, मारे मोहब्बत के अंदर बेताब होकर जा रही है। किसी ने पूछा अम्मी क्या बात है, एक हाथ में पानी का प्याला और दूसरे हाथ में आग के अंगारे हैं, क्या बात है। वो उस वक्त एक अजीब कैफियत में थी, एक अजीब दर्द और एक अजीब सोच में थी। किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा बात यह है कि मेरा अगर इख्तियार हो मेरा बस चले तो मैं इस आग से जन्नत को जला दूं, इस आग से जन्नत को जला दूं और मेरा बस चले तो इस पानी से जहन्नम को बुझा दो। किसी ने कहा राबिया तुम क्या कह रही हो, ये मोहब्बत के अंदर मारी हुई थी और उनका दिल हमेशा यही छलकता था और उनके दिल में यही जज्बा उभरता था। ये पूरी कायनात के अंदर भी इंसान है जो अशरफुल मखलूकात है, जिसके लिए कायनात की तमाम चीजें बताई गई है, ये इंसान छोटी छोटी नियतों को लेकर, अजर सवाब की नियत को लेकर इबादत करे, ये उसके मकसद के खिलाफ है। लिहाजा वो चाहती थी कि हर औरत के दिल में ये मोहब्बत का जज्बा बैठ जाए और हर औरत मोहब्बत ही के साथ अपने अल्लाह के सामने और मेरे महबूब के सामने इबादत करे। तो राबिया बसरिया ने कहा कि ये चाहता है कि अगर मेरा बस चले तो आग से जहन्नम को जन्नत को जला दूं और बस चले तो पानी से जहन्नम को बुझा दूं, ताकि जब ये दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी तो अल्लाह की तमाम बंदियां और अल्लाह के तमाम बंदे सिर्फ और सिर्फ इबादत इसलिए करेंगे कि हम अल्लाह की मोहब्बत के लिए इसकी इबादत करेंगे। ये एक औरत का ख्याल था। अली बिन वाकिफ एक बुजुर्ग गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने साफ देखा मक्षर का मैदान, जरा हम बातों को सुनते ही अब फिर को भी सांसते रहे कि मैदान मक्षर, मक्षर का मंजर है, वहां हर तरह के लोग हैं। हमने देखा एक ऐसा इंसान भी था कि जिसके सामने दस्तरखान लगा हुआ और दोनों तरफ फरिश्ते बैठे हुए और उसको बड़े एजाज और बड़े इकराम के साथ उसे खिलाते। फिर मैं आगे गया तो आगे जाने के बाद मैंने देखा एक बंदा ऐसा है जो न दस्तरखान को देखता है न उस पर रखी हुई चीजों को देखता है और किसी की बातें लिए निहायत गौर और सोच के साथ निहायत यकसूई के साथ वो अपने अल्लाह का दीदार कर रहा है। तो मैंने फरिश्ते से पूछा कि ये बंदा कौन है जो यहाँ जन्नत की नेमतों को और जन्नत के दस्तरखान को जन्नत के खाने पीने की चीजों को नहीं देखता। तो फरिश्तों ने कहा ये वो बंदा है जिसका नाम मारूफ तरकी है, जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी इबादत न तो जहन्नम से बचने के लिए की और कभी भी इबादत न तो जन्नत के लिए की, बल्कि हमेशा ये इबादत अल्लाह की मोहब्बत के लिए करता रहा। तो अल्लाह ने कहा जिसने जन्नत के लिए इबादत की है उसे जन्नत का दस्तरखान बिछा दो और जिसने मेरी मोहब्बत के लिए इबादत की है उसको मेरा दीदार कराते रहो। ये है इबादत का आला दर्जा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम वो मोहब्बत हासिल करें कि इस मोहब्बत से हमारी इबादतों का रंग बदल जाए, हमारे सज्दे का अंदाज बदल जाए, हमारी तिलावत की कैफियत बदल जाए, हमारे फिक्र और रास्ते का अंदाज बदल जाए, हमारी रफ्तार और गुफ्तार बदल जाए, ये तमाम चीजें बदल जाए। जब मोहब्बत इंसान के दिल के अंदर आती है तो उसका मकाम कितना बुलंद होता है, अल्लाह कितना मकाम उसका बुलंद कर देते हैं। एक वाकया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो उनके यमन में कर्म के इलाके में एक इंसान है जो छोटे कद का है, बाल उसके बड़े हैं और उसके बदन में दो जगह पर बर्फ का मरग है, एक तो उसके हाथ में सफेद दाग है और एक उसके पहलू में सफेद दाग है। वो इंसान जो कभी मेरे पास नहीं आया, ऐ उमर ऐ अली, अगर उसकी मुलाकात हो तो उससे अपने अपने दुआ करा। आप अंदाजा लगाइए, एक तो सहाबी रसूल होना खुद कितना बड़ा दर्जा, कितनी बड़ी फजीलत की बात, और वो भी खुलफाए राशिदीन में से उमर हजरत उमर और हजरत अली, इतने बड़े दर्जे के सहाबी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हें फैलाते में जाना तो उनसे दुआ कराना। क्या वजह थी? जिनका नाम तो वैसे करनी है, जब हजरत अली और हजरत उमर ये दोनों हजरात खुद इलाके में गए तो वहां के लोगों से पूछा कि क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा इंसान है जो छोटे कद का हो, बाल उसके जरा बड़े बड़े हो, हाथ में सफेद दाग और बर्फ का मरद हो? तो लोगों ने कहा कि हाँ हाँ है, वो जंगल के किनारे रहता है और वो बंदा ऐसा है कि जो तो दीवाना जैसा है, कुछ ना कुछ मिनमिनाता है, यानी कुछ ना कुछ धीमे धीमे बातें करता है, वो दीवाना टाइप का आदमी है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला फरमाया, मेरा मतलब वही है, मैं उसकी मुलाकात से जाना चाहता हूँ। लोगों ने रास्ता बता दिया, जब वहां गए तो वहां जाने के बाद मलामतें देखी तो समझ गए कि ये वही बंदा है। हजरत उमर फारूक और हजरत अली रजी अल्लाह तआला इन दोनों हजरात ने उनसे दुआ की गुजारिश की। अब आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक वसीयत भी फरमाई थी कि सुनो, मेरी कफनी उनको हिला के तौर पे दे देना मेरे इंतकाल के बाद। अब यहाँ एक सवाल हमें यह सोचना है इल्मी तौर पर कि ये क्या वजह थी कि वो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी कफनी देने की वसीयत फरमाई एक ऐसे शख्स को जो सहाबी नहीं है, एक ऐसा शख्स जो आपकी हयात में आपकी दीदार न कर सका। उसको आपने अपना अपनी पत्नी देने की वसीयत फरमाई, और बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं मगर किसी से दुआ कराने के बजाय फरमाया कि उस बंदे से दुआ कराना, इसकी वजह क्या? हजरत दाता गंज बख्श अली रहमतुल्लाह अलैह दाता गंज से मशहूर बुजुर्ग हैं, फरमाया इसकी दो वजह है। एक वजह तो ये थी कि वो अपने वालिदैन की खिदमत करते थे, दूसरी वजह ये थी कि अगर के उन्हें मदीने का माहौल न मिल सका, अगर के उन्हें सहाबियत का मकाम न मिल सका, अगर के उन्हें नबी अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने का मौका न मिल सका, मगर उन्होंने ये सोचा कि अगर ये मकाम मुझे नहीं मिल सकता तो मैं मोहब्बत के रास्ते से कोई दूसरा मकाम जरूर हासिल कर सकता हूँ, लिहाजा उन्होंने तन्हाई में रहकर ऐसी मेहनत और ऐसा मुजाहदा किया कि अल्लाह ने उनके दिलों को मोहब्बत से इतना भर दिया, इतना भर दिया कि अगर सहाबी होने की बिना पर हजरात सहाबा पर अगर अल्लाह की तरफ से फैजान होता था तो यहाँ सहाबी न होने के बावजूद विलायत का फैजान इनके दिल पे हमेशा होता था। आप इससे नजर लगा सकते हैं कि अल्लाह पाक के यहाँ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के इलाज का क्या मकाम, कि अगर एक बंदा अपने दिल को मोहब्बत से सजा लेता है तो होता क्या था। ये हजरत वैसे हजरत रहमतुल्लाह अलैह लोग ये समझते थे कि दीवाना है और मिनमिनाते रहते हैं, कुछ कुछ जबान से पटपटाते रहते, नहीं बल्कि एक अलामत लिखी है कि जब इंसान का दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता है तो वह तन्हाइयों में अपने अल्लाह से बातें करता है, अपने अल्लाह से बातें करता है। जैसा कि एक शेर भी है कि हम तुम ही बस आगाह हैं इस रब के खफी से, हम तुम ही बस आगाह हैं इस रब के खफी से, मालूम किसी और को ये राज नहीं है, दिल के अंदर जो मोहब्बत का राज छुपा हुआ है, हम तुम ही बताता है इस रब के खफी से, मालूम किसी और को ये राज नहीं है, सुनता कोई हमदम कोई दमसाज नहीं है, सुनता कोई हमदम कोई दमसाज नहीं है, बातें तो है हर दम मगर आवाज नहीं है। वे अल्लाह की मोहब्बत से जुड़ा हुआ इंसान हर वक्त अपने प्यारे अल्लाह से बातें करता रहता है, जब बातें करेगा इंसान तो जाहिर है जब महबूब से बात करेगा तो महबूब को खुश होगा। इसलिए हमें इन बातों से ये समझना है कि अगर हम अपनी इबादत करते हैं तो अब हमें ये तय करना चाहिए रजब के महीने में कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान, तो गया अब हमारी इबादत में बरकत का एक रास्ता ये भी आ जाए कि अल्लाह अब हमारी इबादत में मोहब्बत का रंग शामिल हो। हम जो भी इबादत करें तो इसलिए करें कि अल्लाह आपकी मोहब्बत के लिए करते हैं, अल्लाह जो आपकी मोहब्बत के लिए हम कर रहे हैं तो हमारी इस इबादत को भी मोहब्बत वाली इबादत बना दीजिए। देखिए हमारे अकाबिर ने हमारे मशायख ने इबादत के अंदाज में किस तरह की इबादत की। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा सबका देना चाहती है, दिरहम को धो रही है। नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा आयशा ये दिरहम को क्यों धो रही हो, तो हजरत आयशा ने कहा कि दिरहम को मैं इसलिए धोती हूँ कि मैंने सुना कि जब कोई अल्लाह का बंदा अपने अल्लाह की मोहब्बत में सदका करता है तो पहले वो माल अल्लाह के हाथ में जाता है, फिर वहां से अल्लाह के बंदों के पास जाता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे प्यारे अल्लाह के हाथ में जो दिरहम जाए तो साफ सुथरा जाए, उसमें कोई गंदा लगा हुआ ना हो। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जो अल्लाह की बंदी एक जाहिरी तौर पर माल को धोकर पेश कर सकती है तो वो अपने इबादत को अल्लाह की राह में और अपनी नमाज और तिलावत को अल्लाह की राह में किस तरह पेश कर सकती है। लिहाजा इन बातों से हमें जायजा लेना है अपने आप का कि हमारी इबादत का रंग कैसा है, क्या हम सज्दे में गए तो हमारे सज्दे में मोहब्बत का रंग आया कि नहीं आया, क्या तिलावत में हमें कुछ महसूस हुआ कि नहीं हुआ, या अब तक शुरू से बचपन से जिस तरह हमने नमाज और इबादत को शुरू किया था क्या वही खुशबू इबादत हमारी अब तक चल रही है। अगर ऐसा है तो हमें अपनी इबादत को नए सिरे से करने की कोशिश करना चाहिए। हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जन्नत के अंदर जब जन्नत मिलेगी और हूर और कसूर आएंगे तो मैं कहूंगा न मुझे हूर की जरूरत है न मुझे कसूर की जरूरत है, मुझे एक मसल्ला दे दो ऐ हूरों, मुझे एक मसल्ला दे दो ताकि मैं अपने प्यारे अल्लाह के सामने मोहब्बत के साथ खड़ा रहूं। یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے محبتوں کے ساتھ سب کچھ کیا ہے اور محبت کے لیے کیا ہے، اس لیے وہاں بھی نماز کی تمنا کریں گے. حضرت اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ حضرت فضل الرحمٰن گنج مراد آبادی کے پاس گئے، فرمایا اے اشرف علی تھانوی، اس وقت آپ جوان تھے، تم سمجھتے ہو میں نماز کیسی پڑھتا ہوں؟ جب میں نماز پڑھتا ہوں، سجدے میں جاتا ہوں، تو مجھے ایسی لذت ملتی ہے، ایسی لذت ملتی ہے جیسے لگتا ہے کہ مجھے میرے پیارے اللہ نے میرے پریشانی کا بوسہ دے دیا. اللہ اکبر، یہ کس شان کی محبت تھی اور کس شان کی محبت میں ڈوبی ہوئی نماز تھی. حضرت یحییٰ کانگریوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ کے والد ہیں، وہ فرماتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ سجدے میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سجدے میں ہی پڑے رہے، سجدے میں پڑے رہے، سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتے. تو فرمایا بھائی میں سجدے میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے میں نے اپنے پیارے اللہ کے قدم پر پیشانی رکھ دیا. اب کیوں نہیں مانتا کہ اپنی پیشانی کو اپنے پیارے اللہ کے قدم سے کس طرح اٹھاؤں؟ یہ ہے عبادت کا انداز. لہذا آج کی مجلس میں ہماری خواتین اور ہم سب اس بات کو سوچیں کہ ہم کیا عبادت اسی طرح کرتے ہیں. جو عبادت کی باتیں ابھی آئی ہیں یا ہماری عبادت میں ابھی بہت کم ہے، ہمیں اپنی عبادت پہ نظر رکھنی ہے اور ہر دن سوچنا ہے کہ ہماری عبادت کی کیفیت بدلتی ہے یا نہیں بدلتی، عبادت کے اندر محبت کا رنگ شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر عبادت کے اندر محبت کا رنگ شامل نہیں ہوتا تو ضرورت ہے ہمیں اس عبادت کی کہ جس عبادت پر اللہ کو پیار آ جاتا ہے. اور دیکھیے جب ہم محبتوں کے ساتھ اپنے دل کو بھریں گے تو اس کا ایک بڑا فائدہ ہوگا. جس سے پہلے باطنی امراض کے بارے میں بات آ رہی تھی، تو اس کا ایک بڑا فائدہ، بڑا فائدہ اس کا یہ کہ جب دل محبتوں سے بھرے گا تو دل کے محبتوں سے بھرنے کے بعد اب انسان کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. کبھی بھی وہ اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اگر کسی نے اس کو تکلیف پہنچائی تو تکلیف پہنچانے کے بعد اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا اور اس کی محبت ٹھاسے مارتے ہوئے اس کو کہیں گی کہ ارے یہ تکلیف پہنچانے والا وہی ہے جو تیرے پیارے اللہ کی مخلوق ہے اور تیرے پیارے اللہ کا بنایا ہوا ہے. تو اگر تیرے پیارے اللہ کے بنائے ہوئے انسان سے اگر تجھے تکلیف پہنچی ہے تو اس میں تکلیف کی کون سی بات ہے؟ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے ہوئے ایک علاقے میں پہنچے، وہاں جنگل کے کنارے بیٹھے ہوئے ایک مسافر آیا بڑے خاص بات کے ساتھ. اس نے کہا میں راستہ بھٹک گیا ہوں، ذرا مجھے آبادی بتا دو، مجھے جگہ بتا دو. تو ابراہیم ادہم نے فرمایا کہ یہاں کی آبادی اور یہاں کا شہر ایک راستے کی طرف ہے. جیسے اس راستے پر ہو گیا، آگے جا کے وہ راستہ قبرستان سے ختم ہو گیا. اس سے لگا کہ اس بندے نے میرے ساتھ مذاق کی، میرا ٹھٹھا کیا. واپس آیا اور واپس آنے کے بعد اس نے اپنی سلائی شروع کر دی کہ تم نے میرے ساتھ مذاق کیا، میں نے کہا تھا کہ تو مجھے آبادی کا راستہ بتا دے، تو نے مجھے قبرستان کا راستہ بتا دیا. تو ابراہیم ادہم نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ آبادی تو وہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ آبادی تو وہی ہے، ہر ایک کو وہیں جا کے بسنا ہے، ورنہ باقی جہاں لوگ رہتے ہیں وہ تو مسافر خانہ ہے، لہٰذا آبادی یہی ہے. اس نے بہت ستایا بہت ستایا. پھر اس کے بعد وہ آگے چلا، اتنے میں دیکھا کہ بہت سارا ہجوم شہر سے باہر نکلا ہوا. اس نے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ ہمیں پتہ چلا ابراہیم نے ادہم سفر کرتے ہوئے ہمارے اس علاقے کے جنگل اور باغیچے میں آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اب یہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ ہم نے تو ان کو مار مار کے لہو لہان کر دیا. چنانچہ لوگ بھی آئے اور وہ بندہ بھی آیا. جس وقت وہ آیا اس وقت دیکھا اس نے ابراہیم ادہم کے چہرے پر ایک بشاشت، ایک اطمینان اور اپنے چھوٹے سے کپڑے سے اپنے خون کو وہ پوچھ رہے ہیں. اندازہ لگائیے کہ کتنا اس نے ستایا ہوگا. مگر اس نے فوراً کہا کہ حضرت آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو نہیں پہچان سکا. ابراہیم ادہم نے فرمایا کہ میں نے تو جب تم مارتے تھے اسی وقت ہم نے تجھے معاف کر دیا، ہمارے دل میں کوئی بات نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں یہ جذبہ کہاں سے آیا. ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو جب کہ یہی ابراہیم ادہم کی بات سناؤں میں آپ کو، ایک دفعہ جب شاہی محل میں رہتے تھے تو وہاں انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا کہ میرا بستر مریض میرا تیار کرو. اب اس نے بستر رات کے تنہائی میں خادمہ نے بستر تیار کیا. ابراہیم کو آنے میں دیر ہوئی، उस बांदी ने सोचा कि कितना नरम कितना उमदा बिस्तर है, जरा लेट के देखूं, जरा लेट कर देखूं कि इस बिस्तर पे क्या कैसा लगता है। जब वो बेचारी बांदी की लेटी तो उसको नींद आ गई। इतने में इब्राहिम अज़हम अंदर आए, बादशाह के अंदर आए, कैसे अंदर आए देखा था बांदी मेरे बिस्तर पे सो रही है, आए उसे एक तमाचा लगाया, उसकी आंख खुली खड़ी हो गई और खड़ी होकर वो मुस्कुराने लगी। अंदाजा लगाई माए बहने वो बाकी मुस्कुराने लगी, कहा मुस्कुराती है तू, बेअदबी किया तुमने, गुस्सा भी किया तुमने और ऊपर से मुस्कुराती है। तो उस बाकी ने कहा बादशाह सलामत मेरे आका मेरे मालिक, मैं आपके इस बात से मुस्कुरा रही हूँ कि अल्लाह आज मैं गफलत की नींद थोड़ी देर सोई तो मुझे एक तमाचा लगा। बादशाह तू तो हमेशा गफलत की नींद सोता है, तुझे कितने तमाचे लगेंगे। ये सोचने का एक अंदाज है जब इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ अल्लाह की खशियत और अल्लाह की मोहब्बत आती है। हमें भी सोचना चाहिए वह बाकी होकर कितनी बड़ी बात कहती है कि थोड़ी देर में गफलत की नींद सोई हूँ तो एक तमाचे लगे हैं। हम और आप अपने बारे में सोचें कि हम कितनी देर गफलतों के साथ सोते हैं और दिलों के अंदर कितने गुनाहों को लेकर सोते हैं। हमें पता नहीं उस मैदान में कैसी जिल्ल पर कितने तमाचे खाने पड़ेंगे। मालिक ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह था, वो पुलिस थे और शराब और कबाब से उनकी जिंदगी गुजरा करती थी। एक हसीन और खूबसूरत बांदी खरीद कर लाए, उससे बहुत ही हसीन और खूबसूरत एक बच्चा उनको हुआ, एक लड़की हुई, बहुत प्यार के साथ उसको रखते थे। बच्ची जब थोड़ी बड़ी हुई तो बच्ची को खिलाते भी थे, गोद में बैठाते भी थे और हाथ में शराब पीते भी थे। वो छोटी सी बच्ची हमेशा शराब को लेकर फेंक देती थी। इनको गुस्सा आता मगर उस बच्ची से प्यार था, अल्लाह की मोहब्बत न थी मगर बच्ची से प्यार था तो उसको कुछ न कहते, जब भी वो शराब फेंक देती सब्र कर लेते। इत्तेफाक की बात ये, छोटी सी बच्ची का इंतकाल हो गया। जैसे छोटी सी बच्ची का इंतकाल हो गया बड़ा इनको सदमा हुआ। कुछ दिनों के बाद इन्होंने ख्वाब देखा, जरा गौर से सुनिए मेरी माए बहने। कुछ दिनों के बाद उस खातून ने ख्वाब देखा कि मैदान महशर है, बड़ा हौलनाक, वहाँ बड़ी हौलनाक आवाज है, एक अजीब सा मंजर है खौफनाक, वहाँ एक बहुत बड़ा अजदहा सांप है जो मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। जब वो मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है तो मैं भागा उसको देखकर, मैं हैरान हूँ परेशान, मैं बिल्कुल बेताब, या अल्लाह मेरा यहाँ क्या होगा, इतना बड़ा सांप, उसका मुंह इतना बड़ा कि मेरे वजू मुझे वो हजम कर जाएगा। मैं डरते डरते भागते रहा मैं जगह पहुंचा एक सफेद दिमाग से बूढ़ा इंसान, निहायत कमजोर, जिसे एक हाथ से इशारा किया जाए तो जमीन पड़ जाए। मैंने उसको कहा अल्लाह के बंदे जरा मुझे बचाओ। तो अल्लाह के बंदे ने कहा मैं कमजोर हूँ, मैं तुझे नहीं बचा सकता, मैं तुझे बिल्कुल बचा नहीं सकता, अगर तुम बचना चाहते हो तो फला पहाड़ की तरफ चले जाओ। चुनाते मैं दौड़ते हुए पहाड़ की तरफ गया। जब दौड़ते हुए पहाड़ की तरफ गया तो वहाँ ऐसा लगा कि पहाड़ पर मैं क्या जाऊँगा, सामने जहन्नम है, मैं जहन्नम में पड़ जाऊंगा। वहां से फिर मैं भागा और भागा तो आवाज लगाते हुए मेरा पीछा कर रहा था। मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं बयान नहीं कर सकता, मैं किसको पुकारूं, मैं किससे अपनी मदद चाहूं, मैं किसके जरिए उस परेशानी को दूर करूं। वहां कोई सहारा न था, कोई डंडा न था, कोई मुझे मदद करने वाला न था। मेरे सारी ख्याल में सोच रहा था कि अब ये सांप मुझे डस लेगा और इसके डसने से मैं मर जाऊंगा, उसके जहर की वजह से मैं पीड़ा और तकलीफ महसूस करूंगा। इसी हाल में मैं थकता हुआ गया, देखा एक मकान है, उस मकान पे बंदा खड़ा है। उस बंदे ने आवाज लगाई ए बच्चिया बाहर निकलो, ए बच्चिया बाहर निकलो। जैसे उसने आवाज लगाई कुछ बच्चियां बाहर निकली, वो छोटी सी बच्ची जो मेरी थी और बचपन में जो मर चुकी थी वो बच्ची भी बाहर आई। जैसे वो बच्ची बाहर आई और उस बच्ची ने देखा कि मेरा बाप है और उसे अजहा साहब उसका पीछा कर रहा है और बाप बहुत परेशान है, वो बच्ची एकदम से उछलते कूदते हुए बाप के पास गई और सांप को उसने इशारा किया, ऐ सांप यहाँ आगे मत बढ़ना, ये तो मेरा बाप है। जैसी बच्ची अपने बाप से चिमकी है वो सांप वहां से फौरन वापस लौट गया। उसके बाद बाप ने अपने बेटे को पकड़ के बेटी को पकड़ के रोना शुरू किया। मालिक ने दीनार मालिक ने दीनार ने पूरा माजरा कहा तो बेटी ने कहा अब्बा जान बात असल ये है कि ये साफ और साफ है जो दुनिया के अंदर जो आपने अल्लाह की नाफरमानी की है और अल्लाह की मासियत आपने की है और गफलत वाली जो जिंदगी आपने गुजारी है यही गफलत वाली जिंदगी और यही गुनाह आपसे साफ की शक्ल में यहाँ पे आ गए हैं और जो बूढ़ा कमजोर इंसान था वो आपकी नेकियां थी जो आपको बचाने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद इस बेटी ने कहा अलम यानी लिल्लजीन आमनो अन तख्शा कुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह है मेरे अब्बा क्या अभी ये वक्त नहीं आया क्या इस मंजर को देखने के बाद भी ये वक्त नहीं आया कि आपका दिल अल्लाह के खौफ से रोने लगे और अल्लाह की याद में डूब जाए। इतना देखते ही उनकी आँख खुली उसके बाद फौरन उन्होंने तमाम जिंदगी से तौबा किया और इस तरह से तौबा किया है कि अल्लाह ने उन्हें विलायत का मकाम अता फरमाया। मालिक ने दीनार का ये वाकया तुम्हें बताता है कि हमारी नमाज किस तरह हमारी इबादतें किस तरह सबकी इबादतों को छोड़ने के बाद देखा जाए इबादतों में न खुलूस नजर आएगा न मोहब्बत नजर आएगी न इस्तेहजार और ध्यान नजर आएगा। इसके बखिलाफ अगर गुनाह को देखे तो हमने गुनाह अगर किया होगा तो पूरे ध्यान के साथ किया होगा नमाज बेध्यानी से पढ़ी होगी और गुनाह हमने पूरे ध्यान के साथ किया होगा नमाज हमने गफलत के साथ पढ़ी होगी और हमने नजरबाजी और गुनाहों का देखना पूरे ध्यान के साथ किया होगा। हमारे गुनाह अगर अल्लाह साफ बन गए तो पता नहीं हमारा क्या हश होगा। लिहाजा जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी पे गौर करें कि प्यारे अल्लाह ये टूटे हुए दिल को ये मुरझाए हुए दिलों को ये टूटे हुए दिलों को ये बिखरे हुए दिलों को मौलाए करीम आपकी शान के बारिश के कतरों से और बारिश के पानियों से आप चट्टान को भी भिगा देते हैं और पहाड़ के ऊपर भी हरे भरे घास को उगा देते हैं। प्यारे अल्लाह आप पूरे साल सूखी हुई जमीन को भी प्यारे अल्लाह आप हरा भरा कर देते हैं। ये हमारा दिल गुनाहों की वजह से गफलत की वजह से और माफियत की वजह से बिल्कुल टूटा हुआ है। अल्लाह फज़्ल करम फरमाइए वरना कहीं ऐसा ना होगा कि मालिक के दीदार की तरह नज़ाने महशर में भी हमें वही मंजर देखना पड़े। अपने अल्लाह के हुजूर थोड़ी देर के लिए अपने आंखों को बंद कर लीजिए सर को झुका लीजिए ख्याल कीजिए कि अल्लाह की रहमत आ रही है मेरे दिल में समा रही है मेरे दिल से जुल्मतुल इलाही दूर हो रही है मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर अब भी हमारा दिल अल्लाह ना कहा तो कब कहेगा। हमने बारिश के जमाने में देखा मेंढक पूरे साल खामोश रहता है मगर जब बारिश शुरू होती है वो भी बाहर आकर अपने अल्लाह का जोर जोर से जिक्र करता है। पूरे साल जिक्र करता हो मगर बारिश के जमाने में वो अल्लाह का जिक्र करता है। हमारा दिल कितना मुरझाया हुआ है कि अल्लाह की नेमत को देखने के बाद भी हमारा दिल अल्लाह अल्लाह नहीं करता। मेरे अल्लाह आज तो माफ कर दीजिए मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह हमने तो वहाँ देखा मालिक ने दीनार के पीछे तो एक बात रुक रहा था हमारे इतने गुनाह चारों तरफ से वो कहा हमें घेर रहा होगा कहा हमारे दिलों पे रहम फरमा दीजिए आज फैसला कर दीजिए मेरे बंदे गफलत की वजह से तेरी नमाज तेरी इबादतें सूखी थी चलो हम अपना फज्ल करते हुए अपना फज्ल करते हुए तुम्हारी इबादत को मोहब्बत वाली इबादत बना देते हैं पूरी कुवत लगा दीजिए सूरज जोर लगा दीजिए कि आज इस मस्जिद की बरकत से अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत भी दे दे और हमारे खामोश दिल को अल्लाह ताला अल्लाह अल्लाह करने वाला बना दे। अपनी तवज्जो अपने ध्यान को पकड़िए पूरा ध्यान अल्लाह की तरफ लगाइए। गुनाहगार हैं मगर हदीस से पाक को यकीन है कि जहाँ अल्लाह के बंदे बंदियाँ जिक्र के लिए बैठते हैं रहमत के फरिश्ते रहमत की चादर लेकर आते हैं। बता रहे आज की दुआ उनके फरिश्तों की आमद की बरकत से कबूल हो जाए लिहाजा हम नौमीद ना हो और रहमत के साथ न बैठे बल्कि यकीन के साथ बैठे कि अल्लाह आज अता कर दीजिए। अल्लाह ने ऐलान फरमाया था मैंने तमाम मस्जिद में आने वालों को माफ कर दिया। फरिश्ते ने कहा परवरदिगार एक बंदा या एक बंदी तो ऐसी थी जो तो ऐसी ही आकर बैठ गई थी
کہ کچھ لوگ بیٹھتے ہیں چلو ہم بھی جا کر بیٹھے, گویا وہ دیکھنے آیا ہے وہ تو بڑا گنہگار ہے. اللہ نے کہا فرشتے میرا نظام محبت ہے, میرا نظام محبت ہے, میرا راستہ محبت یہی ہے, لا یشقا جلیس ہوں, جو بھی میرے ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا اس کو ہم شفیع نہیں رکھیں گے, اسے ہم اپنا ذلیل اور نیک بخت بنا دیں گے. پروردگار آج کے بندے جس میں آئے ہیں ان میں بولنے والا یقین ایسے ہی ہے, پروردگار آنے والوں کی برکت سے بولنے والوں کو بھی عطا کر دیجیے.
یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. اللہ شنکر تو نہیں باتیں دعا کی دعا سے کہہ رہے ہیں, اللہ کس سے کہہ رہے ہیں یہ کیفیت یہ دیجیے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, سب خوشیوں کو آگ لگا دوں, غم سے تیرے دل شاد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں, غم سے تیرے دل شاد رہے. اب تو نظر سے سب کو گرا دوں, تجھ سے فقط پر یاد رہے. اب تو رہے بس سال میں آخر, اب تو رہے بس سال میں آخر, پھر سے زباں ہے میرے علا محبت سے دل بھر کر پڑھیے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. حلق سے نکلے, حلق سے نکلے سانس کے بدلے, ذکر تیرا ہے میرے خدا. اللہ یہ کیفیت کب آئے گی, رات تو کر اٹھے تو کبھی تو سنے گی میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. ادب سے نکلے سانس کے بدلے, ذکر تیرا ہے میرے خدا, اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے, اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے. مولا آپ ناراض ہوئے تھے تو بلب باؤل کو اپنے دل چھوڑا دیا تھا, مولا ان کو سب سے ہٹا دیا تھا, وہ بھی تو پہلے یہی میں بیٹھا رہتا تھا, مولا وہ بھی تو آپ کی عبادت میں رہتا تھا. مولا ایسا نہ کیجیے گا, ایسا نہ کیجیے گا, اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے, ذکر تیرا ہے میرے خدا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شاید دنیا سے چلے گئے مولا، وہ کیسی محبت
والا سجدہ تھا، اے اللہ ہمیں بھی تو محبت والا سجدہ عطا فرمائے، اس والا یاد عطا فرمائے، اس والا یاد عطا فرمائے، اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ آج کا بھی تصویر عطا فرمائے، کتنے یہاں بیٹھے ہوں گے جن کی ماں بیمار ہوں گی، مولا کتنے یہاں ہوں گے جن کی ماں یہاں موجود ہوں گی، وہ محبت کی نگاہوں سے اپنی ماؤں کو دیکھتے ہوں گے اور آپ کے پیارے نبی کے باتیں بشارت پر ان کو حج ہونے کا ثواب مل رہا ہوگا۔ مولا اگر کسی کا دیکھنا آپ کو پسند ہے، مولا کسی کا دیکھنا اگر آپ کو پسند ہے اور یقیناً پسند آیا ہوگا، اللہ اسی پسند کا واسطہ دے کر جاتا ہوں کہ جیسے بیٹا اپنی ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ماں اپنے بیٹے کو مانتا بھری نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اللہ آج ہم غریبوں کو، آج ہم فقیروں کو، آج ہم ٹوٹے ہوئے پیچھے کے مریضوں کو مولا نگاہ محبت سے دیکھتی ہے، نگاہ شفقت سے دیکھتی ہے۔ مولا نام دل کو اپنی محبت سے بچا دیجیے، کچھ مالا ہوتی عطا فرما، جو ماں میرے سے رہ گیا ہوتی عطا فرما، اللہ آنے والے رمضان کو ہم سب کے لیے سیر و برکت کا ذریعہ بنا دیجیے، اور ہم آنے والے رمضان کو ہر سال کے رمضان سے اچھا بنا دیجیے، حج والا، عبادت والا، یاد والا، اللہ محبت والا رمضان بنا دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا رحمت یا ارحم